सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदा, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पापा ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे, अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उनकी बेटी के स्कूल से फोन था। प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बहुत प्यारी बेटियां जो कि हमारे स्कूल में पढ़ती है अब वो इस संसार में नहीं रही। पिता को एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर तो वो शून्य स्थिति में थे, आनंद फानन में वो स्कूल पहुंचे और देखा बात सत्य थी, अब उनकी लाडली इस दुनिया में नहीं थी। पिता बहुत उदास रहने लगे। एक मास के बाद उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि फरिश्तों के लोक में बहुत सारे फरिश्ते उड़ रहे हैं और हरेक के हाथ में कैंडल है। उनकी बिटिया भी फरिश्ता बनकर उड़ रही थी लेकिन उसका कैंडल बुझा हुआ था। पापा नजदीक गए और पूछा कि बेटा, सभी फरिश्तों के कैंडल्स तो जल रहे हैं, आपका कैंडल क्यों बुझा हुआ है? तो उनकी बिटिया ने बहुत प्यार से कहा कि पापा, ये मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बार बार ये मेरा कैंडल जलाते हैं, लेकिन चूंकि आप लगातार रोते रहते हो, मेरे लिए दुखी रहते हो कि पता नहीं मेरी बिटिया कैसी होगी, क्यों मुझे छोड़कर चली गई, तो चूंकि आप लगातार रोते हो तो आपके आंसू मेरे कैंडल को बुझा देते हैं, इसलिए पापा आप रोया मत करो, मैं बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। पापा की जब आंखें खुली उन्हें लगा कि सचमुच मेरे दुख से मेरी बिटिया दुखी हो रही है, इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है लेकिन उसके लिए शुभ वाइब्रेशंस भेजने हैं। यही चर्चा हम कल भी कर रहे थे। जीवन में हम अपनों को खोना नहीं चाहते हैं लेकिन ये भी सत्य है कि जो आया है उसे जाना है। कोई अपना समय पूर्ण करके जाता है तो कोई पहले चला जाता है, लेकिन हमारा सच्चा प्यार तब है जब हम उनके लिए बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेजें, सुख के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, ताकि वो आत्मा जहां भी रहे सुखी रहे, शांत रहे। हमारा दुख तो उन्हें दुखी ही करता है। आइए आज की इस कड़ी में भ्राता जी का अभिनंदन करते हुए शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
थैंक्स।
कल की चूंकि ये बातें हमारी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने और भी चर्चाएं की, तो ये एक सुंदर बात किसी ने कही थी जिससे मैंने कहा कि आज के सत्र की शुरुआत करो।
क्या बहुत ही अच्छी बात है कि सचमुच मनुष्य एक दूसरे से थ्रू वाइब्रेशंस जुड़ा रहता है
जी,
और पापा के दुखों के आंसू उसके दीपक को बुझा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जाने वाला तो चला गया है लेकिन अब उसको सुखी देखना, उसको शांत में देखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम उसे दुख के वाइब्रेशंस न भेज के शांति के वाइब्रेशंस भेजेंगे तो दिवंगत आत्मा भी सुखी रहेगी और हमारा चित्त भी शांत हो जाएगा।
बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, कई बार चूंकि ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके बच्चे चाहे वो बहुत छोटे थे चाहे यंग एज में थे, उन सब के लिए आप क्या संदेश?
देखिए, ये बात तो करोड़ों के साथ हुई है और होती रहती है, ये कोई दो चार की घटना नहीं है, जहां तहां हो रहा है और युवक जा रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ये सब कर्मों का खेल है। इसको लोग आम भाषा में कहा करते हैं कर्ज था इतना, उसका कर्ज पूरा हो गया, अब उस आत्मा को जाना ही है। तो ये संसार एक सुंदर नाटक है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, किसी को किसी समय जाना है, किसी को किसी समय, और ये पार्ट फिक्स हुए हैं कर्मों के बंधनों के अनुसार। इसलिए इस खेल को बहुत सहज भाव से देखना है, और जो भी जा रहे हैं उनको शांति के वाइब्रेशंस देखते हुए अपने सुंदर भविष्य की ओर देखना है। जो साथ छोड़कर चले गए वो तो अब साथ वापिस आएंगे नहीं, लेकिन जो हमारे दूसरे साथी हैं उनके साथ को हम निभा सकें, उनको प्रेम दे सकें, उनको सहयोग दे सकें, इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन को आगे की ओर निरंतर बढ़ाना।
बिल्कुल भ्राता जी, जिस परिवार में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई देह त्याग देता है, तो निश्चित रूप से घर में एक माहौल गमगीनी का हो जाता है। तो जो विद्यालय से भाई बहने जुड़े हैं या जो मेडिटेशन करते हैं, क्या विशेष ऐसे समय पे अभ्यास करें ताकि वातावरण में जो एक दुख का माहौल है वो थोड़ा सा दूर हो और सबके चित्त शांत हो?
एक तो बहुत अच्छी चीज जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से की जाती है, प्राय बहुत जगह की जाती है, कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो वहां एक साप्ताहिक ज्ञान देने का प्रोग्राम चलाते हैं रोज एक घंटा। तो उससे क्या होता है, उस घर में भी वातावरण में शांति होती है, जो दुख के वाइब्रेशंस हैं वो हटने लगते हैं, और कई आत्माओं को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, कईयों का भविष्य भी उससे प्रभु मिलन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये करते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में जाकर हमारे सभी भाई बहनें एक घंटा योग अभ्यास भी करते हैं, भोग भी वहीं पर लगाते हैं, उस आत्मा को भी और भगवान को भी। तो ये सभी इसको अरेंज कर लें अपने घरों में, चाहे ऐसी घटनाएं होती हैं बहनों से वो संपर्क करते हैं, बहनें इस तरह का प्रोग्राम बना देती हैं कि वहां एक घंटा कुछ दिन तक जाकर बहुत लोग योग अभ्यास भी करें ताकि वाइब्रेशंस में शांति हो जाए। और ये 7 दिन का जो हमारा ज्ञान देने का प्रोग्राम चलता है इसको भी वहां आयोजित कर दिया जाता है, तो आसपास के अनेक लोगों को भी इससे फायदा होता है और ये एक बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है दिवंगत आत्मा के लिए भी। तो ये कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के यहाँ जहां तहां किए जाते हैं और सबको इसको,
तो मतलब ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, वहां से जो बहने हैं आकर के ये कार्यक्रम,
क्योंकि इसमें बहुत दुख भरा माहौल तो हो ही जाता है ना, उसको समाप्त करना परम आवश्यक होता है। नहीं तो क्या हुआ है, कई माताएं उस शोक में ऐसी पीड़ित हुई कि आधी पागल हो गई, कईयों को स्ट्रोक आ गए, कईयों को और कुछ हो गया है, कईयों को उसमें इतना सदमा लग गया कि जीवन भर और लोग चाहिए इनको संभालने के लिए। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये 7 दिन का प्रोग्राम हर एक को ऑर्गेनाइज कर ही लेना चाहिए,
क्योंकि मेडिटेशन की लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, इसीलिए मेडिटेशन के ही प्रश्न हमारे पास और भी आए हुए हैं, मैं उन्हें अब लेना चाहूंगा। ये हैं सलोनी मुंबई से, और ये कहते हैं कि मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूं, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मेरा भय बढ़ता जा रहा है, टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, जो मैं याद करना चाहती हूं वो याद नहीं हो रहा है। क्या मैं योग का कोई विशेष अभ्यास कर सकती हूं जिससे ये चीजें मुझे याद भी हो जाएं और मेरा ये जो भय है वो दूर हो जाए?
दो चीजें हो गई, एक भय और एक मेमोरी पावर वीक, और दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बड़े खतरनाक हो गए,
याद ही नहीं होगा।
और 12वीं क्लास की स्टूडेंट, अब इसको अपना भविष्य किसी भी फील्ड में ले जाना है तो निश्चित रूप से इसके लिए चिंता का विषय है। पहली चीज तो ये, इनको अपना भय समाप्त करना होगा। बहुत बच्चों को ये भय एग्जाम से पहले प्रारंभ हो जाता है, और मान लो 15 दिन पहले प्रारंभ हो गया तो 15 दिन का भय इकट्ठा काम करता है, तब जब पेपर हाथ में आता है तब ये बच्चे नर्वस हो जाते हैं, जो कुछ पहले ही वीक हो गए थे मेमोरी, और भी जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं और बड़े वहां परेशान और उदास रहते हैं, कुछ का कुछ लिख के आते हैं। इसलिए पहली चीज होती है भय को समाप्त करना, तो उसके लिए हम दो बहुत अच्छे अभ्यास सिखाते हैं और इसको भी वही करना है। सवेरे आंख खुलते जब भी उठे, जरूर नहीं 4 बजे उठना है, 6 बजे ये उठे, 6 बजे उठते ही ये अपने को याद दिलाएंगे, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूं, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा याद दिलाएंगे, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे हर फील्ड में सफलता मिलनी ही है। चिंतन में ले आए इसको थोड़ा, भगवान के बच्चों को ही यदि सफलता नहीं मिलेगी तो भला और किसको मिलेगी। ऐसा चिंतन कर ले, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे तो सफल होना ही है, मैं निर्भय हूँ। साथ में ये भी संकल्प करें, मैं निर्भय हूँ, आई विल एंजॉय माई एग्जामिनेशन। ये संकल्प रोज सवेरे उठ के 7-7 बार कर लिया करें, इससे इनका भय भी समाप्त होगा और एक निश्चिंतता आएगी और इनके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे जब हम उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है और उसमें जो संकल्प हम अपने को दे देंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए जैसे कमांड हो जाते हैं, आदेश, और उसको वो आदेश मान नहीं है तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही, मैं संपूर्ण निर्भय हूँ, मैं अपने एग्जाम को एंजॉय करूंगी, और एग्जाम तो मेरे लिए एंजॉयमेंट है, ऐसे संकल्प करेंगी तो एंजॉयमेंट की ओर इनके कदम चलेंगे। एक ये चीज, दूसरा इनको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है। देखिए मेमोरी पावर को जो चीज नष्ट करने वाली थी, पहला तो भय, वह मनुष्य की मेमोरी पावर को एकदम नष्ट कर देता है। तो जैसे जैसे निर्भय बनेंगी इनकी बुद्धि फिर से जागृत होगी और बुद्धि में शक्ति है सब कुछ याद करने की, वो जागृत होगी तो इन्हें बहुत कुछ याद रहेगा। लेकिन मैं एक राजयोग का अभ्यास इन्हें सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये निश्चित रूप से राजयोग से जुड़ी हुई है। कम से कम आधा घंटा इनको राजयोग अवश्य करना चाहिए रोज, ताकि मन बिल्कुल पीसफुल होने लगे, क्योंकि ये सुंदर सा सिद्धांत है, मन जितना शांत बुद्धि उतनी ही तीव्र, मन जितना शांत बुद्धि की मेमोरी पावर उतनी ही शार्प। तो इनको अपने चित्त को शांत करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम नहीं है, अभी एग्जाम सामने आ रहा, मैं आधा घंटा योग भी कर लूं। नो, आधा घंटा योग करने से इन्हें 4 घंटे का फायदा हो जाएगा। जो याद करते हैं ये 4 घंटे में, वो याद होने लगेगा इनको 1 घंटे में, फायदा ही फायदा है। इसलिए आधा घंटा बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ चित्त को शांत रखते हुए, योग को एंजॉय करते हुए इन्हें योग अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर योग अभ्यास में दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूँ स्वराज अधिकारी हूँ। ये बहुत सुंदर शब्द है हमारा स्पिरिचुअल, स्वराज अधिकारी का अर्थ होता है मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की देह की मालिक हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, अपनी राजा हूँ। फिर अपने मन बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरे मन तू शांत हो जा। अब कहे एक मास के लिए तुम शांत हो जाओ, जब तक मेरे एग्जाम हो तुम शांत, और हे मेरी बुद्धि अब जो मैं पढ़ूं तो उन सब को याद कर लेना। तो बुद्धि हमारी शक्ति है, वो हमारे आदेश का पालन करने लगेगी, रोज ये काम करें। लेकिन अपने को पहले ये याद अवश्य दिलाएंगे, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, हे मन बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, अब तुम ऐसा करो, जो मैं पढ़ूं सब याद कर लेना, और जब एग्जाम आए, जब पेपर मेरे हाथ में आए, वो सब इमर्ज कर देना। ये अभ्यास इनको रोज 2 बार अवश्य कर लेना है, सवेरे और जब फिर स्टडी चालू करें, और एग्जाम जब आ जाए, जब पेपर इनके हाथ में आए, फिर से जरा धैर्य चित्त होके 10-20 सेकंड के लिए मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, हे मेरी बुद्धि जो आज तक मैंने पढ़ा है अब तुम सब कुछ इमर्ज कर दे, तुम्हारे पास इन सभी प्रश्नों के सुंदर उत्तर हैं, अब उसे इमर्ज कर। तो बुद्धि वैसा ही आदेश का पालन करेगी और इनके अनुभव बहुत सुपर होंगे। ये प्रैक्टिस इन्हें रोज कर लेनी चाहिए, इससे सहज इनका भय भी दूर होगा और सब कुछ याद रहे।
आप राजयोग के लिए सुबह के समय को सर्वोत्तम बताते हैं, लेकिन मैं बिजनेसमैन हूं और घर आते खाना खाते 12 बज जाते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और एक दूसरा भी प्रश्न ऐसा ही है भ्राता जी, चंद्र कुमार कुशवाहा जी का, और ये कहते हैं कि मेरी ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, तो इसमें समय का कुछ ऐसा नहीं रहता, कभी शायद उनको लेट नाइट काम करना पड़ता होगा, तो ऐसे में जो खास राजयोग के लिए आप सुबह का समय सर्वोत्तम बताते हैं तो क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, कल मेरे पास भी एक ऐसा ही फोन आया
जी,
कोई बहन पूछ रही थी कि मेरी ड्यूटी सवेरे 4:30 बजे ही समाप्त होती है, अब मेरा तो अमृत वेला मिस हो जाता है। मैंने उसे कहा तुम्हारा काम मिस होता है, तुम तो जगी हुई हो, एक बजे से ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो, रूरियान करो, सब सोए हुए हैं शिव बाबा, मैं तुम्हारी बच्ची जगी हुई हूँ, लाओ वरदान, जितना खजाना तुम्हारा मिस कहाँ हो रहा है, तुम तो अधिक से अधिक एंजॉय कर रही हो। फिर आधा घंटा योग अभ्यास करके अपना सो जाओ, एंजॉय करो। मनुष्य के पास क्या है कि उसने एक लकीर पकड़ ली है, ओ भाई 4 बजे उठ के योग करना, बैठना ऐसे स्ट्रिक्ट होके तो अमृत वेला सफल हो। नो, एंजॉय एवरीथिंग। आप 6 बजे भी उठे ना बच्चों को, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं केयरलेस नहीं बना रहा हूँ, पर बच्चे अगर 4 बजे उठेंगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें नींद आएगी, इसलिए बच्चे अपनी नींद को पूरी करें, 6 बजे उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और एंजॉय करें अपनी दिनचर्या को। उठते ही अपने एंजॉयमेंट को खत्म न कर दें कि अरे अरे ये क्या हो गया, लेट हो गया, सब कुछ मिस हो गया। अरे जो मिस हो गया जो है उसको तो एंजॉय करो। तो इनको जब भी इनकी शिफ्ट की ड्यूटी समाप्त हो तब अच्छा योग कर लें, और जब ये सोकर उठें तब से इनके लिए अमृत वेला है, तब अच्छा योग कर लें। क्योंकि अमृत वेले का महत्व यही है कि उस टाइम हमारा चित्त शांत होता है, हमारा तन भी फ्रेश हो गया, हम सो लिए हैं, मन भी शांत है, अब तब हमें एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, तब हमें ईश्वरीय मिलन की सुंदर अनुभूति होगी। लेकिन जैसे इस बिजनेस वाले की समस्या है कि ये 12 बजे आते हैं, अगर ये 3:30 बजे या 4 बजे उठेंगे तो इनको नींद आएगी, बॉडी भी थकेगा, ब्रेन भी थका हुआ होगा, इनका ना योग सफल होगा और नींद पूरी होगी। इसलिए इनको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, 6 बजे तक जरूर ये सोएंगे, 6 बजे उठ के बिल्कुल फ्रेश होकर 1 घंटा आनंद लें, योग करें, चाहे आश्रम पे जाएं, योग करें, बाबा के महावाक्य सुने, उससे अपने चित्त को भरपूर करें और पूरे दिन को एंजॉय करें। इसलिए अमृत वेले का तो महत्व है, लेकिन जहां ऐसी परिस्थितियां हो वहां सारा दिन हमारे लिए योग अभ्यास करने के लिए खुला हुआ है और बाबा की वही शक्तियां हमें हर समय मिलती रहेंगी।
एक संकल्प शायद इनका होता होगा भ्राता जी, जैसे परमात्मा महावाक्यों में हमने भी सुना है कि सुबह के समय परमात्मा वरदान देते हैं, तो शायद ये विचार रहता होगा कि वो वरदान हम भगवान से नहीं ले पाते हैं, तो शायद ये संकल्प इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता
है। हाँ, ये संकल्प ही बहुतों को परेशान करता है, लेकिन एक बात इसमें याद रखनी चाहिए कि जिनका अमृत वेला किसी भी कारण से मिस होता है उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है श्याम के समय, 6:30 से 7, 7:30, ये जो 1 घंटे का समय है ये भी अमृत वेले के तुल्य ही चित्त को शांत करने वाला। देखिए, तब सूरज उदय होने वाला था, तब सूरज अस्त होने का समय है, तो प्रकृति में बहुत शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। उस टाइम भी यदि ये प्रभु वरदान प्राप्त करना चाहेंगे तो वैसी अनुभूति इनको हो जाएगी। लेकिन बिजनेस वालों का क्या होता है कि वो बिजी हुए तो बिजी हो गए, लेकिन उन्हें ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि आधा घंटा तो वो शाम को अपना निकालें ही। इसको भी उन्हें महत्व तो देना चाहिए कि राजयोग की प्रैक्टिस, प्रभु मिलन के अनुभव उनके बिजनेस के लिए भी और उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको सपोर्टिंग चीज मानते हुए महत्व देकर एक आधा घंटा का समय चाहे अपने घर में करें चाहे सेंटर में जाके करें अवश्य निकालना चाहिए।
चलिए, इनकी बात तो रही भ्राता जी कि ये देर से आते हैं, देर को सोते हैं, लेकिन कईयों के ऐसे भी फोन कॉल आते हैं कि हम ठीक टाइम पे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 10:30 तक सो जाते हैं, फिर भी हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, हम ब्लॉक कोशिश कर लें कि हम सुबह उठें, उठ करके राजयोग का अभ्यास करें, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे?
ऐसी भी समस्या बहुतों की आती है जी, इसमें उन्हें देख लेना चाहिए 2-4 चीजें कि बॉडी कहीं वीक तो नहीं है उनकी।